जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
ओम शांति। भक्ति मार्ग में एक किताब है जिसमें भगवान के हजारों नाम हैं, और हम सब कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम भगवान के हैं। अब आम तौर पर नाम निकालने वाले तो माता पिता होते हैं, और भगवान को तो कोई माता पिता है ही नहीं, तो उसके नाम किसने निकाले? इतने नाम बिना माता पिता के हम सब ने उनके नाम निकाल दिए, तो हम सब कौन हो गए उनके? इसलिए बाबा कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं, कहता है ना, तो सबसे अधिक नाम है बाबा के और दूसरा नंबर हम बच्चों के। लौकिक माता पिता ने तो हमारा एक ही नाम निकाला था, लेकिन भगवान ने हमारे कितने नाम निकाल दिए, गिनती है? हर बार मुरली चलाते हैं बाबा तो नया नाम निकाल देते हैं, अनगिनत नाम। फिर भक्ति में भक्त उन्हीं नामों से भक्ति करते हैं। तो बाबा का एक बड़ा प्यारा सा नाम है सुखदाता, और हम बच्चों का भी बाबा ने प्यारा सा नाम निकाला है सुखदेव। जो बाप का काम सो बच्चों का काम, इसलिए बाबा ने एक स्लोगन दिया कि ना दुख दो और ना दुख लो। तो बाबा की ये बात हम सबको बहुत प्रिय लगी, और हम सब ने इसको पक्का कर लिया कि हम कभी भी किसी को भी दुख नहीं देंगे। जो अच्छे अच्छे भक्त हैं वो भी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो जाए। दो तीन दिन पहले एक भक्त फैमिली यहाँ आई और मैं उसको लेके अंबाजी गई, तो भक्तों के पीछे भिखारी लग जाती है ना, मुझे दे दो मुझे दे दो। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसे देने से कोई फायदा नहीं है, इनको ज्ञान दिया जाए। कहती है नहीं बहन जी, ये मांगते हैं तो इनको दे दो, कहीं किसी की आत्मा दुख ना पाए कि कोई आया और मुझे देके नहीं गया। तो मेरे मन में आया, देखो ये ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कितना ध्यान है कि किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, दे दो ये जो मांगते हैं, भले थोड़ा थोड़ा दे दो सबको। तो जो अच्छे अच्छे भक्त हैं वो भी कोशिश करते हैं कि दुख ना मिले किसी को हमारे द्वारा, भले वो अपने ढंग से सोचते हैं, और हम ज्ञान की रीति से सोचते हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख न मिले। सभी सोचते हैं ना, सबको ये मंत्र पक्का है ना कि हमको किसी को दुख नहीं देना, भले थोड़ा घाटा हो जाए, भले थोड़ा सहन करना पड़े, भले थोड़ा पीछे हटना पड़े, भले थोड़ा मेहनत करनी पड़े, लेकिन दुख नहीं मिले। तो इस आधी बात में तो हम सब बहुत पक्के हैं कि हमें किसी को दुख देना नहीं है, लेकिन बाकी आधा स्लोगन दुख लेना नहीं है, वो कभी कभी कच्चा हो जाता है। देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा कि जो लेगा तो वो दिए बिना रहेगा कैसे? अब मटके में पानी भरा है तो उसमें से रिसेगा ही, जो चीज इनपुट जो है वही आउटपुट होगा, जो चीज अंदर गई है वो बाहर निकलेगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम दुख ना लें। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे दुख को सुख में बदलने की कला जानते हैं वो 108 की माला में आ जाते हैं। अपन दुख को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको सुख में बदल सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी कला है। जैसे दुनिया में आजकल लोगों के पास कला है, वो खराब चीज को अच्छी चीज में बदल देते हैं। घरों में जो वेस्टेज पड़ी होती है उसको इकट्ठा करते हैं और उससे बर्तन बना देते हैं, औजार बना देते हैं, फटी पुरानी खराब कूड़े में जाने वाली चीजों से वो काम की चीज बना लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं किसी की कूड़े जैसी बात, खराब बात, आप उसको भी बहुत कीमती बात बना लो, अपने जीवन पर लगा लो और अपने जीवन को महान बना लो। जिसमें ये कला है वो इस दुनिया में प्रतिदिन उन्नति करता है, क्योंकि दुनिया में बढ़िया बातें तो हैं ही नहीं, खराब बातें हैं, और आपको खराब बातों को अच्छा बनाना आ गया तो आपका तो काम बहुत तेज गति से चलेगा। जैसे कहते हैं कैमरे वाला होता है ना, वो जितने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उतनी ज्यादा उसकी कमाई होती है। तो हमारे में से जितने भी नेगेटिव को मैक्सिमम पॉजिटिव बनाते हैं उनकी उतनी ज्यादा कमाई होती है। हम दुख क्यों ले लेते हैं, दुखी क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे बाबा ने कई बातें बताई हैं। एक बात तो बाबा कहते हैं कि पिछले जन्म का हिसाब किताब है, उसके कारण भी दुख मिलता है। जैसे कोई बच्चा जन्म से अनाथ पैदा हुआ, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, बुआ पाल रही है, मौसी पाल रही है, कहेंगे पिछले जन्म में किसी के माता पिता छीन के आया है इसलिए इस जन्म में माँ बाप नहीं मिले, जन्म से ही दुख मिल रहा है बेचारे को, या जन्म से ही शरीर खराब है, बीमारी है। तो कुछ दुख पिछले जन्म के होते हैं और कुछ दुख अनुमान के कारण लोग पैदा करते हैं, कुछ दुख देह विमान वश स्वभाव वश पैदा होते हैं, बाकी भगवान किसी को दुख नहीं देता। लेकिन हम बच्चों को ये करना है कि दुख चाहे किसी भी रीति से आया, अपने को उसको सुख में बदलना है। बस ये कला सीखनी है, ये बड़ी भारी कला है, क्योंकि तभी 108 की माला में आएंगे। अब इसके लिए जैसे हमारी दादी जानकी कहती है कि ये दुनिया दुखों का सुपर बाजार है। सुपर बाजार में नित नई नई चीजें आती हैं, वैरायटी वैरायटी चीजें आती हैं। तो इस सुपर बाजार में नए नए प्रकार के वैरायटी वैरायटी दुख। अब समझदार आदमी सुपर बाजार के बीच में से निकलता है तो सोचता है मेरी पॉकेट में पैसा नहीं, मुझे कोई चीज चाहिए नहीं, चुपचाप निकल जाता है। लेकिन सब ऐसे समझदार नहीं होते, इधर खड़े हो गए, इधर खड़े हो गए, उस चीज को देखने लगे, उसको देखने लगे, बिना जरूरत की चीजें भी खरीद लेते हैं, फिर घर में आके कहते हैं अरे मैं तो फालतू उठा लाया, इतने पैसे भी खराब हो गए। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो फालतू दुख खरीद लेते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, फिर दुखी होते हैं। फिर दुखी होंगे तो दुख देंगे भी, बाहर भी निकालेंगे। अपन जो चीज खाते हैं उसकी ढकार आती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो अंदर जो चीज चली गई वो बाहर निकलेगी, आंख से, मुख से, कान नाक कैसे भी निकलेगी। अच्छा है जाने ही ना दे। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत तरीके बताए हैं। मुझे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है, बहुत बड़े सन्यासी थे वो, स्वामी विवेकानंद के गुरु, और बहुत ही सादे, बहुत ही तपस्वी, बहुत ही काली के सच्चे भक्त। तो इन सन्यासियों में ये नियम होता है कि गृहस्थियों के पास जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ और भिक्षा में जो चीज मिल जाए उसको माथे से लगा लो। ये मत सोचो कि इसने भिक्षा में ये क्यों दिया, कुछ भी दे दे। तो सच्चे सन्यासी ये मान करके चलते हैं कि भिक्षा में भगवान ही डाल रहा है, तो एक बार भिक्षा मांगने के लिए वो गए और आवाज लगाई है घर के सामने, माता भिक्षाम देही। अंदर एक बुढ़िया थी, वो पोचा लगा रही थी फर्श पे, बहुत बूढ़ी थी, फर्श पे पोचा लगा रही थी, दुखी भी हो रही थी, बड़बड़ा भी रही थी, क्योंकि उसकी बहू पीहर चली गई थी तो उसको घर का सारा काम करना पड़ रहा था। तो बड़बड़ाती बड़बड़ाती काम कर रही थी, इतनी देर में सन्यासी ने आवाज लगाई तो उसने जोर से बड़बड़ाया कि ये भी आ गया दुखी करने, मैं तो पहले ही काम कर करके थकी हुई थी। तो जब थोड़ी देर के लिए वो बाहर नहीं आई, उसने फिर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही। तो उसने देखा ये फिर बोल रहा है, जाता ही नहीं है यहां से। तीसरी बार जब आवाज लगाई तो बुढ़िया गुस्से में तो थी, और जोर से गुस्सा आ गया, कहती अगला घर देखना। और ऐसे कहते कहते वो जो पोचा था ना हाथ में, वो उसकी झोली में डाल दिया। बोली जा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, सोचा होगा ना रहेगा पोचा, ना कल लगाना पड़ेगा, पीछा छूटे। और उसने तो भगवान की दी हुई भेंट समझ करके उसको स्वीकार कर लिया, ले आया आश्रम में, उस कपड़े को सुखा लिया। तो पुराने जमाने में लोग हाथ से सूत काटते थे, मोटा मोटा सूत, उसकी वो डोवटी बनती थी, इस तरह का वो कपड़ा था, तो मोटे मोटे सूत के तार थे, सूखने के बाद उसको उधेड़ लिया, बड़ा कपड़ा था, छोटे से कपड़े को उधेड़ लिया, और जो बट लगा हुआ धागा था उसका बट खोल लिया तो रुई बन गई वापस, और उस रुई की बत्ती बना ली, बाती जो अपन दिया जलाते हैं बाती बन जाती है, और जो सुबह शाम दीपक जलता होगा मंदिर में उसमें वो बाती लगानी शुरू कर दी, क्योंकि नियम ये है कि दी हुई चीज का सदुपयोग करना है, फेंकना नहीं है, उसको माथे से लगा के रखना है। हो गया काम, माता भी बात को भूल गई, ये भी भूल गया। कुछ समय के बाद उस आश्रम में कोई प्रोग्राम रहा होगा और शहर के लोग जाते होंगे, जैसे बाहर त्योहार जाते हैं, तो वो जो आधा टुकड़ा था पोचे का वो कहीं उस महिला को आश्रम में दिख गया। तो उसको याद आया, अरे अरे ये तो वही पोचा है जो मैंने गुस्से में उसकी झोली में डाला था। तो चुपचाप एक छोटे चेले से पूछा कि ये कपड़ा कहां से आया। उसने कहा जी पता नहीं कहां से आया, लेकिन हमारे सन्यासी जी ने इसकी जो बातियां थी, ये जो बाती है ना, बाती ये इसी की बनी हुई है, इसका बट उधेड़ करके और इसकी बाती बना ली। तो बुढ़िया को तो बड़ा दुख हुआ, अरे ये इतना पहुंचा हुआ सन्यासी, और मैंने उस दिन गुस्से में क्या किया, ये तो मेरा तो बड़ा पाप हो गया, माफी मांगनी चाहिए। तो बेचारी गई और पांव पकड़ के बैठ गई, महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ा गलत काम किया, मैंने आपको बड़ा दुख दिया, मैंने आपको कड़वा बोला, और मैंने क्या दिया आपको, मेरा तो बड़ा पाप बन गया। तो वो आश्चर्य से देखने लगे कि ये क्या कह रही है। उन्होंने कहा आपने तो मुझे कोई दुख नहीं दिया। कहा नहीं महाराज, उस दिन मैंने गुस्से में बड़ा मिसबिहेव किया और ऐसे ऐसे पोचा डाला। तो उसने कहा मुझे तो कुछ मिसबिहेव नहीं लगा, मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं आई, मुझे तो कुछ बुरा ही नहीं लगा, मैंने तो आकर के ये देखा कि मुझे जो भिक्षा में मिला मैं उसका कैसे सदुपयोग कर सकता हूँ। तो मुझे उसकी यही सबसे अच्छी विधि लगी कि इस बाती को अगर भगवान स्वीकार करे तो देने वाली माता का भी पुण्य बने, उसका भी भाग्य बने, मैंने तो इस भावना से इसकी बाती बनाई। यूं तो मैं इसका और भी कोई उपयोग कर सकता था, लेकिन बाती में जले इससे बढ़िया उपयोग इसका और कोई नहीं हो सकता था। तो ये तो आपका पुण्य है, आपके घर की रुई की बाती देखो दिए में जल रही है। तो बुढ़िया के बेचारी के आंसू, मैंने इतना बड़ा पाप किया और इसने मेरे पाप को पुण्य में बदल दिया। बुढ़िया ने फिर प्रण किया कि आज के बाद कम से कम कोई सन्यासी आएगा तब तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, आगे पीछे आए तो देखा जाए। अब ये सोचने की बात है कि एक सन्यासी जिसको बाबा का ज्ञान तो नहीं है लेकिन उसको भी इस बात का पता है कि लोग मुझे दुख देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी की भी मनोवृत्ति नेगेटिव होगी तो दुख देगा, लेकिन मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, मुझे तो पुण्य अपना भी बनाना है और दूसरों का भी बनवाना है। तो ये कला भक्ति मार्ग में भी लोगों में रही है। बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि आप भी एक कला सीखो, किसी ने किसी भी मनोवृत्ति से कुछ भी कर दिया आप उसकी मनोवृत्ति को सुधार नहीं सकते, क्या आप उसको बदल नहीं सकते, क्या आप उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा मुरली में कई बार कहता है दुख लेना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, लेकिन हमको भी ये सोचना है कि इस बात का मैं बढ़िया से बढ़िया कहां सदुपयोग कर सकता हूं। झूठी बात, इल्जाम की बात, बुरी बात, क्रोध की बात, परचिंतन की बात, बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात, ग्लानी की बात, कई रंग बिरंगी बातें हैं जो दुनिया में या संगठन में सुनने को मिलती हैं। सुनी और ये बात ठीक नहीं है ये भी बुद्धि में आया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब मुझे इसका फायदा उठाना है, फायदा उठाना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग ऐसा युग है, पट भी आपका और चित्त भी आपका, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, आप दोनों तरह से विजयी हो, तो मुझे इस बात का लाभ उठाना है किसी भी तरीके से, ये बात मुझे घाटे में नहीं ला सकती। आप उदास हो गए, दुखी हो गए, चिंतन किया, मन में गांठ बांध के रख ली, बदले की भावना रखी, या उस व्यक्ति के प्रति अपना नेगेटिव दृष्टिकोण बना लिया, ये तो सारा घाटे में गया आपका, ये तो घाटे का व्यापार है, लेकिन आपने उस बात से फायदा उठाया, उस घटना से, उस इंसिडेंट से आपकी उन्नति हुई, आपका ज्ञान बढ़ा, कुछ भी फायदा आपने उठाया, तब कहेंगे कि आपने दुख को सुख में बदला। इसलिए अच्छी बात है तो हमारा फायदा है ही, और अगर अच्छी बात नहीं है तो भी हमने क्या किया, उसको बदल करके अच्छा बना लिया, तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों बातों में हमारी जीत है। एक बार मुझे याद है एक साइकिल यात्रा निकल रही थी और हम लोग चिंतपूर्णी में थे, हिमाचल में एक हिल स्टेशन है चिंतपूर्णी, देवी का मंदिर है चिंतपूर्णी देवी का मंदिर है, तो वहां से उस यात्रा की शुरुआत होनी थी और एक हिमाचल के मिनिस्टर होते थे सुखराम जी, उन दिनों वो मंत्री थे और आजकल तो नहीं है वो मंत्री, उनको यात्रा का उद्घाटन करना था और हम लगभग 18-20 भाई बहने थे, तो हमको रोक दिया कि अभी यात्रा चालू मत करो, ये उद्घाटन करेगा मंत्री, फिर आपकी साइकिल यात्रा चालू होगी, और मंत्री को एक सभा को संबोधित करना था, तो वहां एक टेंट लगा हुआ था, उसमें कुछ जनता बैठी थी, कुछ आ रही थी, माइक लगे हुए थे और हम इस इंतजार में थे कि इसका भाषण पूरा हो तो हमारी यात्रा का उद्घाटन हो और हम चले, तो पास में ही हम सब खड़े थे, भाई साइकिल लेके खड़े थे, बहनें भी खड़ी थी गाड़ी के पास, तो चूंकि वो टेंट और सब हमारे बिल्कुल पास था तो उसने जो भाषण किया वो हमने सुना, तो उसने भाषण करना शुरू किया और पता नहीं वो कौन सी पार्टी का था, जिस भी पार्टी का रहा हो जो विरोधी पार्टी थी उसके लिए वो बड़े ही अपशब्द बोल रहा था, जैसे ये लोग बोलते हैं ऐसे शब्द, जो बाबा हमको तो कभी छुट्टी ही नहीं देता, ऐसे शब्द सार्वजनिक रूप से बोलने योग्य शब्द नहीं, बहुत ही अभद्र शब्द, तो वो बोल रहा था और जनता बड़े मजे से सुन रही थी, बैठी थी जनता। तो मेरे मन में आया कि देखो ये कैसे अभद्र शब्द बोल रहा है, सरेआम बोल रहा है, माइक लगा के बोल रहा है और कितने लोग सुन रहे हैं, हो सकता है दूसरी पार्टी वाला भी सुन रहा होगा, कोई ना कोई तो जरूर, इसको किसी का डर भी नहीं, हिचक भी नहीं, संकोच भी नहीं, बड़ा शेर बन के बोल रहा है ये, कितनी निर्भयता है इसमें। तो मैं उस समय ज्ञान में आज की तरह से परिपक्व नहीं थी, लगभग 20-22 साल पुरानी बात है, और मुझे उस यात्रा का लीडर बना रखा था और मुझे जगह जगह भाषण करने थे, तो मेरे मन में एक सूक्ष्म सा प्रश्न था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कहाँ कहाँ मुझे बोलना पड़ेगा, कोई सेंटर तो है नहीं, थोड़े से लोग हैं, कहाँ कहाँ प्रोग्राम रखेंगे, तो बाबा मैं ठीक बोलूं, लोगों को बाबा का ठीक संदेश मिले, ऐसे मेरे मन में एक विचार चल रहा था। तो जब मैंने उसका भाषण सुना तो मेरे मन में आया ये आदमी तो झूठी बातें बोल रहा है और अभद्र बातें बोल रहा है, असभ्य बातें बोल रहा है, लेकिन कैसे शेर बन के बोल रहा है, इसको ना डर है ना संकोच है, तो मुझे इससे ये गुण उठाना चाहिए, अगर ये झूठी बात शेर की तरह बोल सकता है तो मुझे भी सच्ची बातें शेर की तरह ही बोलनी है। तो मेरे में ताकत आ गई उसका भाषण सुन के, मन में जो प्रश्न था ना, मैंने कहा जब झूठी बातों पे कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा, ये सारे सभा में चुप बैठ के सुन रहे, किसी में ताकत नहीं जो इसको ओपोज करे कि भी सुखराम जी आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा थोड़े हो रहा है, और देखो लोग चुप सुन रही हैं, तो मैं तो आत्मा की बात सुनाऊंगी, परमात्मा की अल्टीमेट ट्रुथ जो सत्य बाप ने सुनाया है वो सत्य ज्ञान सुनाऊंगी, जरा भी मिलावट नहीं। तो मुझे अपना असली माल देने में क्या भय, जब ये नकली माल निर्भय होके दे रहा है तो ये जो दुनिया है ना, इसमें कदम कदम पर आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपन कहते हैं भाई दुनिया खराब है, कैसे रहेंगे इसमें, लेकिन ये खराब ही हमको संपूर्ण बनाएगी और ये खराब दुनिया ही हमारी कमी कमजोरियां निकालेगी, क्योंकि देख देख करके प्रेरित होंगे और फिर बदलेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बात को एज इट इज मत लो, उसका फायदा उठाओ। ओम शांति। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को ये भी सिखाया है कि ये जितने भी विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जो भी है, अब मान लीजिए अज्ञान काल में किसी भी विकार का हमारे में बहुत फोर्स था, हर एक में किसी ना किसी एक विकार का बहुत फोर्स होता है, अब मान लीजिए किसी में क्रोध का बहुत विकार था, इतना क्रोध की अग्नि थी कि अभी अभी जला दूं, मार दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं एक सेकंड में, और किया भी है ऐसा कर्म। बाबा ने अब कहा कि बच्चे शांति की शक्ति बढ़ाओ, तो कई भाई बहने आके कहते हैं कि वो पुराना संस्कार ना याद आता है, पुराना संस्कार अभी भी हावी हो जाता है, बदलने की तो कोशिश करते हैं कोई भी विकार हो। अब हम उनको कहते हैं अरे बड़ी अच्छी बात है, वो जो पुराना संस्कार है ना उसकी अगर आपको स्मृति है तो आप याद करो कि आप में क्रोध का फोर्स कितना था, कितना फोर्स था कि अभी अभी इस आदमी की गर्दन दबा दूं, इतना गुस्सा आता था एक सेकंड में गर्दन दबा दूं, इसका मतलब बहुत फोर्स था, और कई बार ऐसा किया भी, जाके गर्दन पकड़ ली, लोगों ने छुड़वाया, ना आगे सोचा ना पीछा सोचा, ऐसा किया भी या मारपीट भी की क्रोध में। अब जैसे वहां फोर्स था, आपको फोर्स का अनुभव तो है ना, अब उसी फोर्स को आप यहां बदल दो, जैसे वहां गर्दन दबाने का फोर्स आता था, ऐसे यहाँ क्या फोर्स आना चाहिए? किसी को जीए दान देने का फोर्स आना चाहिए, अभी अभी जाऊं और इस दुखी को सुखी बना दूं। फोर्स तो आपके अंदर था, आप फोर्स के अनुभवी हो, आपने उस फोर्स को यूज भी किया था। आगा देखा नहीं, पीछा देखा नहीं, लोकलाज नहीं, क्या होगा, जेल हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, सारी बातें भूल करके आप गर्दन पकड़ लेते थे, इतना फोर्स था आप में। तो अब क्यों सोचते हो ज्ञान सुनाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तब कौन सा लोग गर्दन दबवाने के लिए तैयार होते थे, आप जबरदस्ती दबाते थे। तो ऐसे ही अब ज्ञान सुनाने में क्यों सोचते हो कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो भी सुना दो। काम तो आपको फोर्स से करने की आदत है ना, अब उसको बदली कर लो। तब भी लोग क्लास नहीं आती थी, लोग क्या कहेंगे, छोटी सी बात पे देखो भिड़ गया। तो अब क्यों लोग ला जाती है भाई, ज्ञान सुनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा आया पंडित बन गया, सन्यासी बन गया, घर के लोग कहेंगे सारे काम धंधे छोड़ दिए भाई तू इसी में लग गया। तब पहले जब क्रोध करते लोग लाज नहीं आती थी, तो अब भला ज्ञान सुनाने में क्यों लोग ला जाती है? उसी संस्कार को रिप्लेस करो, जितना फोर्स वहां था उतना ही फोर्स अभी इस तरफ लगाओ। आपके अंदर फोर्स तो है, तो आप ये क्यों सोचते हो मेरा क्रोध छूटता नहीं है? अब छोड़ो मत, लेकिन उस फोर्स को चैनलाइज करो। इसी तरह लोभ का संस्कार था जी, आधी रात को भी पैसे के ही सपने आते थे, कमाने की सोचते थे, खाना खाए ना खाए कमाने की बात सोचते थे, नोटी दिखाई देते थे, ठीक है बहुत पैसा कमाया, बहुत इकट्ठा किया, चाहे लीगल चाहे इलीगल, पैसा ही पैसा कमाने का फोर्स था, इसका मतलब इकट्ठा करने का संस्कार है। कहते हैं बहन जी अभी भी पैसे का आकर्षण है, कोई बात नहीं है, आप उसको रिप्लेस करो। आधी रात उठो तो भी सोचो ज्ञान इकट्ठा करूं, ज्ञान की नई नई बात इकट्ठा करूं, सुबह उठते ही फिर ज्ञान का चिंतन करो, खाना खाओ ना खाओ लेकिन ज्ञान इकट्ठा हो जाए, ब्रह्मा बाबा की तरह ज्ञान रत्नों में साहूकार हो जाऊं। आपको आदत तो है ही इकट्ठा करने की, तो उस आदत को आपको करना क्या है? बनी बनाई चीज है, बनी बनाई भूमिका है, बनी बनाई स्टेज है, आपको करना क्या? थोड़ा सा परिवर्तन करना, इकट्ठा करने की तो आदत है ही ना। तो बस जहां धन इकट्ठा करने में बुद्धि लगती थी, वहां ज्ञान इकट्ठा करने में, योग इकट्ठा करने में लगा दो। एक बार हम लोग ऊपर जा रहे थे तो एक बंदर बंदरी अपने बच्चे को ना गोद में लेके बैठी हुई थी, तो हमारे साथ एक भाई था, उसने कहा मुझे बंदर जब ऐसा दिखाई देता है ना तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैंने कहा बाबा तो कहता है बंदर में सबसे ज्यादा मोह होता है, आपको भला क्या प्रेरणा मिलती है? बोला मैं ये सोचता हूँ कि जैसे बंदरी मरे हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ती, तो मेरी आत्मा भी निकल जाए ना तो भी मैं शिव बाबा को ना छोड़ू, ऐसे ही पकड़ के रहूं जैसे बंदरी बच्चे को पकड़ के रहती है। तो मैं इसकी गोद में बच्चे को नहीं देख रहा, मैं अपनी गोद में शिव बाबा को देख रहा हूँ, मुझे भी शिव बाबा से इतना ही प्यार है। तो मोह का संस्कार मान लो किसी में है, नहीं छूटता है कोई बात नहीं है, आप जिन जिन से मोह है उनके बजाय उतना ही मोह शिव बाबा से कर लो, मत छोड़ो उसको, रिप्लेसमेंट ही तो करनी है ना, मोह को छोड़ना थोड़े है, रिप्लेसमेंट करनी है। तो बाबा कहती हैं संगम युग परिवर्तन का युग है, शरीर के बजाय आत्म अभिमानी स्थिति का परिवर्तन कर लिया, थोड़े से घर के लोग परिवार के बजाय सारी दुनिया को परिवार मान लिया, मृत्यु का जो भय था शरीर छूट ना जाए उसके बजाय ये स्मृति आ गई मैं अमर हूं, ना कभी मरे थे ना कभी मरेंगे। जहां एक छोटे से घर को घर मानते थे, अब यूं तो घर बहुत हो गए, बाबा के जितने भी घर हैं सारे हमारे घर हैं, परम धाम हमारा असली घर है। तो हमने किया क्या? स्मृतियों का परिवर्तन ही तो किया है ना, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है, भागे तो किसी भी चीज से नहीं है, वहीं के वहीं है, उन्हीं लोगों के बीच में है। तो ये विकारों का भी परिवर्तन करना है। कहते हैं एक बार एक सन्यासी एक गांव में गया, भ्रमण कर रहा था, तो लोगों ने उसके गले में फूलों की माला डाली, फिर आगे गांव में गया, मोतियों की माला डाली, फिर आगे एक और गांव में गया तो उस गांव में कुछ खाली लोग थे। और कहते हैं खाली दिमाग तो फिर उल्टी सीधी बातें सोचता है। खेती के दिन थे नहीं, चबूतरे पर बैठे थे तो सोच रहे थे भाई आज का दिन कैसे पास करें, कोई हंसी कोई मजाक ऐसा कुछ करें दिन कटे। तो इतनी देर में किसी ने समाचार सुनाया कि भाई एक सन्यासी भ्रमण करता करता पैदल चलता चलता आपके गांव में भी आ रहा है। तो खुश हो गए, बोला अरे हाँ देखो मजाक करने का अच्छा मौका मिलेगा, चलो अपन ऐसा करते हैं गांव के जितने भी घर है ना टूटे हुए जूते मांग लेते हैं और एक रस्सी में पिरो लेते हैं, और जैसे ही वो सन्यासी गांव में प्रवेश करेगा अपने में से कोई भी वो जूतों की माला उसके गले में डाल देंगे। सन्यासी को गुस्सा आएगा, अपन खूब मजा लेंगे उसका, खूब हंसेंगे। तो योजना पास हो गई, खाली लोग थे और जूते इकट्ठे हो गए और जूतों की माला भी बन गई। और सन्यासी जैसे ही गांव में प्रवेश हुआ तो उनमें से एक जो अपने आप को लीडर समझता था सबका, उसने वो जूतों की माला सन्यासी के गले में डाल दी। लेकिन सन्यासी मुस्कुराता रहा और सबको ऐसी दृष्टि देता रहा। तो सबने कहा ये क्या है, जूतों की माला पहन के खुश हो रहा है, इसको पता नहीं पड़ा लगता है, नहीं तो गुस्सा आता इसको। तो कहा अरे तू जाके बता सन्यासी को। तो उसने कान में कहा महाराज देखो देखो आपके गले में जूतों की माला डाल रखी है। फिर भी मुस्कुराता रहा वो बड़ा खुश। बोला मैं कुछ ज्ञान की बातें सुनाऊंगा, उसके बाद मुझे अगले गांव में जाना है। तो बैठ गए सारे लोग और वो जूतों की माला पहने बैठा रहा मस्ती से। फिर उसने भाषण करना शुरू किया, प्रवचन शुरू किया। उसने कहा देखो जी मैं तो विश्व शांति का संदेश देते देते चला आ रहा हूं और मैं बहुत गांव में गया, बहुत शहरों में गया। आप सबको पता है कि दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के प्रोफेशन हैं। सब जगह मुझे बहुत लोग मिले और मेरा संदेश सब लोगों ने बहुत प्यार से सुना। मैं आपको बताऊं अभी मैं कल सुबह एक गांव में था, वहां लोगों ने मेरे गले में फूलों की माला डाली। फूलों की माला गले में डाली तो मैं समझ गया कि इस गांव में जितने भी लोग हैं सब फूलों का धंधा करते हैं, सारे के सारे माली हैं और इनके बड़े बड़े बगीचे हैं। तो देखो इन लोगों ने अपने बगीचों के फूल ला करके मेरे गले में डाले। अब मैं कौन सा वहां रहने वाला था, थोड़ी देर में मैं आगे चला गया, अगले गांव में गया तो लोगों ने मेरे गले में मोतियों की माला डाली। अब मैं थोड़े जानता हूं गांव के लोग कैसे हैं, पर मोतियों की माला डाली तो मैं समझ गया कि ये सब मोतियों के हार बनाने वाले लोग हैं, यहाँ हारों का धंधा होता है, मोतियों के हारों का। अब मैं वहां भी प्रवचन दे करके चला और आपके गांव में आया। अब आप लोगों ने मेरे गले में जूतों की माला डाली तो मैं समझ गया कि आप सारे ही जूते बनाने वाले लोग हो, जिसके पास जो चीज होगी वही तो देगा। तो ठीक है आपका भी धंधा फले फूले और अब मैं अगले गांव में जा रहा हूं। तो अब बेचारे क्या करें, वरदान मिल गया जूते वो भी टूटे हुए उनके फलने फूलने का। तो कहते हैं हम किसी को जो देते हैं वो देना देना नहीं होता, वो लेना होता है। और हम जो लेते हैं वो वास्तव में लेना नहीं होता, वो हमको कई गुना देना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप देवता बनो, देने वाले बनो, देते रहो, थको मत देते देते। ये मत सोचो इसने तो वापस दिया ही नहीं, मुझे कितने दिन हो गए देते हुए, एक बार तो कम से कम दे। अब उसमें बाबा ने दो बातें बताई हैं। एक बात तो बाबा ये कहता है कि जिसको आपने बहुत लंबे समय तक दिया, वो कब वापस लौटाएगा? जब भरेगा, मटके में से पानी बाहर कब निकलता है? जब मटका भर जाता है। आपने एक गिलास डाला और फिर आप खड़े हो गए कि मैंने तो एक गिलास दे दिया, अब मटका एक गिलास मुझे वापस लौटाए ना। अरे अभी तो तली में भी नहीं लगा, थोड़ा और डालो ना, बेचारा खाली पड़ा है इतना बड़ा मटका। अब आप मान लो 50 गिलास भी डाल दो, तब भी वो वापस नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 100 गिलास की है। और आप थक गए, 50 के बाद देना बंद कर दिया आपने, तो ना मटका भरा और ना ही आपको कुछ मिला। जब तक वो भरे तब तक आपको देना है, और जैसे ही वो भरेगा बिना कहे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आत्माएं 63 जन्मों से खाली पड़ी हैं, ना तो उनके पास प्यार की शक्ति है, ना शांति की शक्ति है, ना पवित्रता का बल है, ना उनके पास आंतरिक आनंद है, ना एकाग्रता है, ना सुख है, ना खुशी है। अब आपने किसी को थोड़ा सा प्यार दिया और फिर आप सोचो कि ये मुझे दुगना दे दे, अरे भाई अभी तो वो बिल्कुल खाली है। सूखी जमीन में भी जब बरसात पड़ती है तो नाला तुरंत थोड़े बहने लगता है, पहले वो सूखी जमीन सोखती जाती है, फिर जब वो पूरी तरह से सोख लेती है तब जाके कहीं नाला बहना शुरू होता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे धैर्य रखो, तुरंत वापस मिले ये कामना मत करो, कच्चा फल मत खाओ, अभी फल को पकने दो। तो एक तो कारण ये है कि हम जिसको दे रही हैं वो अभी पूरा भरा नहीं, और दूसरा कारण क्या है, अगर आदमी ले ही ले रहा है दे नहीं रहा है, दूसरा कारण ये है कि वो देवता घराने की आत्मा नहीं है। देने का सबसे अधिक संस्कार किसमें है? देवताओं में। हम बाबा के बच्चे देवता हैं, 2 युगों तक तो हम देवता रहे हैं, और उसके बाद भी हमारी यादगारें मंदिरों में लोगों को देती रही हैं। तो सबसे अधिक देने वाले, देने के संस्कार वाले को 5000 साल के इस चक्र में दाता कौन? परमात्मा तो दाता है ही, लेकिन हम उसके बच्चे जो चेतन में देवता थे और बाद में जिसकी यादगारें भी देती हैं सुख शांति आनंद प्रेम। तो आप तो देवता घराने के हो, देवता बनने वाले हो, देवताई रूप में 21 जन्म आपका हाथ सदा देने की मुद्रा में रहेगा, तो फिर आप किसी दूसरे से अपनी तुलना क्यों करते हो कि वो क्यों नहीं देता, वो देता क्यों नहीं है? हमारा कुल है देवताई कुल, हर व्यक्ति अपने कुल के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे राजपूत कुल को लोग बहादुर मानते हैं, तो बहादुरी उनका कुल का संस्कार है, इसी तरह से देना देवताई कुल का संस्कार है। तो हम बाबा के बच्चे देने वाले हैं, किसी से हमको लेने की कामना नहीं रखनी है। तो क्या करेंगे, कैसी भी बात हो, कैसी भी घटना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाएंगे, दुख को भी सुख में बदलेंगे, घाटे की बात को भी मुनाफे की बात बना लेंगे, दुख की बात को भी सुख में बदल लेंगे। तो बाबा ने कहा जो बच्चे ये कला सीखेंगे वो 108 की माला में आएंगे। तो इस भट्टी में हम ये कला सीख के जाएंगे, अपने सब पुराने खाते खत्म करके जाएंगे और एक ही खाता रखेंगे, जमा का खाता। ओम शांति।
भाग्य बना के चलो, शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो, सबके भाग्य बनाते चलो।
भाग्य बना।